हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का जो दिव्य संदेश है उसकी नींव डाल रहे हैं। हम पिछले कई हफ्तों से भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो सांख्य योग का वर्णन भगवान किए हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। सांख्य योग जिसके पीछे ये पूरा अध्याय इसको शीर्षक मिला, अर्थात वो योग संख्या के द्वारा जो प्रस्थापित हो। संख्या इस भौतिक संसार में जो अलग अलग तत्वों से हमारा शरीर और ये पूरा संसार जो 24 तत्वों से बना हुआ है उनकी गणना। संख्या का अर्थ केवल काउंटिंग नहीं होता कि जैसे हमें संख्या का अर्थ क्या समझ में आता है, जैसे 100 नंबर एक संख्या है, 10 एक संख्या है, परंतु यहां पर तो संख्या का अर्थ गणना। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी वस्तु स्थिति की गणना संख्या कहते हैं उसे। यहां पर भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान, शरीर और आत्मा में अंतर क्या है इसका ज्ञान बता रहे हैं और गणना के द्वारा। हालांकि वो गणना ऐसी गणना नहीं है कि हमारे शरीर के कितने अंग हैं या आत्मा की कोई गणना कर सके उस प्रकार से, काउंटिंग, कोई काउंटिंग नहीं है इसमें। लेकिन अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा, अलग अलग न्यायों के द्वारा भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं। और ये है भगवद गीता की नींव। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ भगवद गीता, द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। तो हमने हमारी पिछले सेटिंग में जो श्लोक लिया, श्लोक क्रमांक 16, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टोंतस त्वनयोस तत्व दर्शी भी। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि तत्वदर्शी किसे कहते हैं। तत्वदर्शी की परिभाषा क्या है? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा एक है सत और सत के विपरीत है असत। सत मीन्स एटर्नल, असत मीन्स टेम्पररी। तो भगवान ने कहा कि सत जो है एटर्नल होने के वजह से इट कैन नॉट बी किल्ड, और असत जो है देयर इज नो एंड्योरेंस फॉर असत, कि कोई नित्यता नहीं है असत की। और जो इसके विभाजन को जान लेता है, जो इसकी भिन्नता को पहचान लेता है वो है तत्वदर्शी। वो तत्व का दर्शन कर पा रहा है। अब इसके पश्चात भगवान आज का जो श्लोक हम ले रहे हैं इसमें भी बहुत ही गूढ़ रहस्य और गुह्य सिद्धांत प्रस्थापित करते हुए उसी सांख्य योग को समझा रहे हैं, आत्मा और शरीर का अंतर। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य कर्तुम अर्हति अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। इस श्लोक का यह अनुवाद है। तो अब यहां पर भगवान उसी आत्मा को एक बहुत ही विशेष और दिलचस्प पहलू के द्वारा समझा रहे हैं। वही आत्मा जिसके विषय में हम इतना कुछ सुने भी हैं और अब तक भी 17वें-16वें श्लोक तक जो भगवान ने आत्मा और शरीर के विषय में भौतिक संसार के संदर्भ में जो कुछ समझाया, हां इस सिद्धांत को तो हम समझ लिए हैं कि दोनों भिन्न हैं और शरीर नाशवान है, आत्मा जो है अनित्य नित्य है। अब यहां पर भगवान आत्मा का जो अस्तित्व है उसका एक लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा को हम इन आंखों से तो नहीं देख पाएंगे। ये जो चर्म चक्षु हमारे हैं, दीज फ्लैशी आईज, दे कैन नॉट सी दी आत्मा। दिव्य दृष्टि चाहिए, परंतु फिर भी यहां पर भगवान आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण? हां, आत्मा के अस्तित्व का लक्षण है चेतना। चेतना को अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्शियसनेस। हम सब अभी जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, हम सब के अंदर एक चेतना है जिसके वजह से हम बैठ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, होपफुली सुन पा रहे हो ध्यान देके। तो हां, ये शरीर ये सब कुछ कर रहा है, शरीर बैठा है, आंखें देख रही है, और बीच बीच में हमारे कुछ शारीरिक अंग कार्यरत रहते हैं, सांस सांस अंदर बाहर हो रही है ना, तो कार्यशील है। परंतु इसके साथ साथ ये जितने भी शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी शारीरिक क्रियाओं का भान हम सबको है। वी आर ऑल कॉन्शियस ऑफ अवर बॉडीली एक्टिविटीज राइट नाउ। आई एम कॉन्शियस ऑफ माय स्पीच, यू आर कॉन्शियस ऑफ योर हियरिंग। हम सब चेतना में हैं। अब इस चेतना को कोई पकड़ कर नहीं दिखा सकता, ये देखो मेरी चेतना यहां पर नहीं, यू कांट कैच होल्ड ऑफ योर कॉन्शियसनेस। परंतु फिर भी हम सब उस चेतना का अनुभव हमारे अंदर हर क्षण कर सकते हैं। जब तक ये हमारा जो शरीर है इसे जीवित कहा जाता है, तब तक अंतर क्या है? एक सामान्य अंतर हम अनुभव करते हैं। ये पांच कोश, अन्नमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, अंततः आनंदमय। तो ये पांच प्रकार के कोश, बहुत सरल है समझना कि हम कैसे इन पांच प्रकार के कोशों में, हमारा जो जीवात्मा है, आत्मा जो है, वो पांच प्रकार के कोशों में बंद रहता है। या जो लक्षण है हमारे आत्मा का, क्या लक्षण? चेतना। वो कैसे इन पांच प्रकार के कोशों को अनुभव करता है? अन्नमय कोश। आप देखिए, छोटा बच्चा वो अधिकांश अपना बचपन का जीवन अन्नमय कोश में बिताता है। कोई भी वस्तु बस उसको मुंह में डालनी है ना, चाहे आप उसको बिस्किट दो चाहे खिलौना दो, बिस्किट भी मुंह में खिलौना भी मुंह में, हाँ फिर उसको समझ में आता है कि ये खाने लायक है ये खेलने के लिए। धीरे धीरे जब विकसित होता है तब उसे ये बात समझ में आती है। तो अन्नमय कोश, अब बड़े होने के बाद क्या हम अन्नमय कोश से बाहर आ जाते हैं, हाँ या ना? नहीं, अभी भी हम अन्नमय कोश में हैं, है ना? अन्नमय कोश में हैं क्योंकि ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। अन्नमय कोश, दिस इज ऑन अ ग्रॉस बॉडीली प्लेटफॉर्म बिकॉज वी नीड फूड फॉर अवर सर्वाइवल। ये शरीर को इस प्रकार से प्रकृति ने बनाया है कि जब तक हम इसमें अन्न नहीं डालेंगे तब तक ये जो शरीर है, ये फ्यूल, जो जो खाना है इसके लिए फ्यूल है, ये गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर ये जो चेतना है, हम केवल शारीरिक रूप से नहीं खाते, हम अब उस चेतना में खाते हैं। वी आर कॉन्शियस ऑफ अवर ईटिंग, है कि नहीं? आप जब आपका खाना खाते हो तो उसमें जब आप मान लीजिए कि चपाती और सब्जी खा रहे हो तो केवल ये जिह्वा नहीं उसे आस्वादन कर रही, केवल ये दांत नहीं उसके उसे चबा रहे। यू आर कॉन्शियस, यस दिस इज वॉट एवर, दिस इज पोटेटो सब्जी और दिस इज भिंडी सब्जी वॉट एवर, और दिस इज सॉल्टी, दिस इज स्पाइसी, दिस इज लिटिल सावर, दैट योर कॉन्शियसनेस इज इन देयर, आपकी चेतना उसमें। और फिर वो चेतना आपको उस अन्नमय कोश का आस्वादन ठीक से कराती। इसलिए आपने देखिए कभी अनुभव किया होगा कि जब आपकी चेतना थोड़ी ठीक नहीं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। खाने का स्वाद नहीं बदला है, खाने का स्वाद वही है, लेकिन चेतना थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, कॉन्शियसनेस इज नॉट अप टू द मार्क, तो उसमें भी मजा फिर नहीं, ले जाओ खाने की इच्छा नहीं। खाने की इच्छा क्या हो गया, पेट तो खाली है ना, पेट तो खाली है, जीवा वही है, खाना भी वही है, चेतना। तो इसलिए जब हम अन्नमय कोश की भी बात करते हैं तो चेतना के द्वारा ही उस अन्नमय कोश को हम उसका आस्वादन कर सकेंगे। उसके पश्चात मनोमय कोश, कि आप देखो छोटे बालक, छोटे से बच्चे, जानवर, वो अधिकांश अन्नमय कोश में ही अपना जीवन बिताते हैं। यदि जानवरों की तुलना हमसे की जाए तो एक विशेष अंतर हमारे में और जानवरों में ये है कि हम मनोमय कोश का भी आस्वादन कर सकते हैं। ज्यादातर जानवर जो हैं वो केवल अन्नमय कोश, ग्रोस सेंसेस, दे आर सिंपली एंगेज्ड इन ग्रोस सेंसरी एक्टिविटीज, उनको मनोरंजन ये चीज नहीं पता क्या मनोरंजन क्या होता है ना। मनोमय कोश का अर्थ क्या है? मनोरंजन। अन्नमय कोश का अर्थ क्या है? देह रंजन, देह को जो रंजन दे, प्लेजर्स ऑफ द बॉडी, प्लेजर ऑफ द माइंड इज मनोमय। अब देखिए हमने मनुष्य समाज में कितने बड़े बड़े आविष्कार कर रखे हैं, किसके लिए? मनोमय कोश को संतुष्ट करने के लिए। जैसे मैं अभी पिछले हफ्ते बंबई में था तो वहां पर, वो हमारे इस्कॉन के भक्त तो नहीं है परंतु मुझे जानते हैं थोड़ा सा, तो वो आए और उन्होंने कहा कि आपने ये हॉलीवुड की मूवी देखी अवतार? मैंने कहा अवतार ये तो कोई बॉलीवुड का नाम होना चाहिए। नहीं, ये हॉलीवुड की मूवी अवतार। और वो बम्बई में एक डोम थिएटर है वहां पे लगी हुई, वो टिकट ले गया, चलिए अवतार संस्कृत नाम है ना। तो फिर वो बता रहे थे कि ये एक वो 3D मूवी है, ये एक 3D मूवी बनाने के लिए 200 मिलियन डॉलर्स। कितना होता है? 200 करोड़, 200 की 2000 करोड़, ऐसे कुछ है। 200 मिलियन डॉलर्स, 1000 करोड़, श्योर। 1000 करोड़ की 3 घंटे की पिक्चर। किस लिए? मनोमय कोष, मनोमय कोष को संतुष्ट करने के लिए। वहां पे कोई पेट पेट नहीं भरने वाला किसी का, उसके लिए जाके बाहर कुछ खरीदना पड़ता है। आपका अवतार वैसा का वैसा रहेगा बाहर से। तो मनोमय कोष के लिए देखिए जो कुछ प्रयोजन किया गया है, कितना खर्चा हुआ है, एक ना 3 घंटा इस मन को रंजन देने के लिए। और जिसने ये जो भी कुछ मूवी बनाई उसे 12 साल लगे, कहा गया 12 साल लगे उसे बनाने के लिए। तो 12 साल से हमारे मनोमय कोष को 3 घंटे के लिए संतुष्ट करने के लिए देखिए कितना अथक प्रयास चल रहा है। तो मनुष्य समाज में हम संतुष्ट नहीं है केवल अन्नमय कोष, अन्नमय कोष से ऊपर हमें चाहिए मनोमय। अब मनोमय से ऊपर ज्ञानमय, जो ज्ञानी होते हैं वो केवल मनोरंजन में रंजन नहीं लेते, उनको फिर ज्ञान। ज्ञानी जो होते हैं, जैसे संस्कृत का एक श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, कि तर्क वितर्क करने के लिए जो ज्ञानी होते हैं वो बहुत अध्ययन करते हैं, फिर वो तर्क वितर्क करते हैं शास्त्र पर आधार पर। फिलोसोफर्स, यू नो, दे डिबेट, दे वॉन्ट टू ग्रेटिफाई देयर इंटेलिजेंस। तो इसलिए उसे कहते हैं ज्ञानमय। और उसके पश्चात फिर उस ज्ञान को विज्ञान में, कि कैसे हम उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकें, अंत तक किस लिए? हमारे मन के लिए और शरीर के लिए। तो फिर से चला जाता है विज्ञानमय कोष के बाद, यदि वो अध्यात्म से संपर्क में नहीं आया है तो विज्ञानमय कोष के बाद फिर से वो अन्नमय। अन्नमय का कोष केवल अन्न नहीं बल्कि शरीर से संबंधित जो भी कुछ, ग्रोस फिजिकल बॉडी। परंतु आत्मा के स्तर पर है आनंदमय कोष, आत्मा के स्तर पर है आनंदमय कोष। और वो कोष पूरा तब होता है जब हम परमात्मा के संपर्क में आते हैं। तो जब हम परमात्मा के संपर्क में आते हैं तब जाकर हम अन्नमय कोष, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय से परे आनंदमय कोष, जो एक्चुअल चेतना हमारी है, जिसमें लगना चाहिए वो चेतना उसमें लगती है, जो द सिम्टम ऑफ द सोल विच इज कॉन्शियसनेस इन इट्स प्यूरिफाइड, मोस्ट प्यूरिफाइड फॉर्म इज इन आनंदमय कोष। तो यहां पर हम भगवान जो बता रहे हैं कि अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, इट इज इदम ततम परवेडिंग, द कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग ऑल थ्रू द बॉडी बट इट इज कमिंग फ्रॉम द सोल। जो उसका स्रोत है वो है हमारी आत्मा। जैसे कि साधारण से उदाहरण श्रील प्रभुपाद दिए हुए हैं कि यहां पर ये बल्ब शैंडलियर है, तो ये स्रोत है रोशनी का भी, परंतु यहां पर रोशनी व्याप्त है पूरे कमरे में, किसके वजह से? वहां से जो रोशनी आ रही है, उस बल्ब से जो रोशनी आ रही है वहां से यहां पर पूरा व्याप्त है। तो भगवान आज के श्लोक में ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा को यदि आपको समझना है तो डायरेक्टली आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, लक्षणों से समझना। तो हमारे आज की चर्चा में हम यही चर्चा करेंगे कि कैसे इस भौतिक संसार को और आत्म साक्षात्कार को या आध्यात्मिक संसार को हम लक्षणों से कैसे पहचाने, हाउ टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल रियालिटी थ्रू द इनडायरेक्ट परसेप्शन इन दिस वर्ल्ड। ये आज थोड़ा और सैद्धांतिक रहेगा हमारा डिस्कशन, तो हमें थोड़ा ज्ञान और विज्ञानमय कोश में ज्यादा सचेत रहना होगा। आज के श्लोक के ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। घबराइए मत, हम एक एक कर समझाएंगे। प्रति अक्ष, अक्ष संस्कृत का शब्द है आंखें। तो ये हमारी आंखें कुछ वस्तुओं को देखती हैं, स्थितियों को देखती हैं, तो आंखों से हमें ज्ञान मिलता है। प्रति अक्ष का अर्थ केवल आंखें नहीं होता, अर्थात हमारी बाकी इंद्रियां भी, त्वक इंद्रिय, हमारे हमारे जो कान है, नाक है, जिह्वा है, इनसे भी हमें जो ज्ञान मिलता है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान से, जैसे कि हम सब यहां पर आज भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। कैसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे कर रहे हैं? हां, यहां से मुख से हम उस श्लोक को कहे, आप कानों से सुन रहे हो, आंखों से यहां पर देख रहे हो, तो जिह्वा, कर्ण और आंखें ये लगे हुए, और इसके पीछे क्या होना चाहिए? चेतना, वो जरूरी है सबसे। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान से हम अपरोक्ष ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपरोक्ष का अर्थ है, ठीक है, यहां पर हम उसे अंग्रेजी में भी समझा देंगे तो फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है सेंसरी परसेप्शन, परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है नॉन सेंसरी परसेप्शन, और अपरोक्ष ज्ञान फैक्चुअल रियलिटी। तो यदि फैक्चुअल रियलिटी अपरोक्ष ज्ञान की तुलना हम आत्म साक्षात्कार से करें या आध्यात्मिक संसार से करें, तो ये हमारा भौतिक शरीर इन आंखों से, इस जिह्वा से, इन कानों से, इस शरीर से, क्या हम अपरोक्ष ज्ञान को समझ पाएंगे? अपरोक्ष ज्ञान, फैक्चुअल रियलिटी, कैन वी अंडरस्टैंड द फैक्चुअल रियलिटी यूजिंग द मटेरियल सेंसेस? यस और नो? अच्छा, ओके, वी हैव मिक्स्ड ओपिनियंस हियर। हु सेज यस? हां, कौन बोल रहा है? क्या कारण है उसका? यर द फैक्चुअल रियलिटी इज स्पिरिचुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्चुअल रियलिटी इज आत्मा, आत्मा। फैक्चुअल, अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ है आत्मा के स्तर पर, भौतिक कुछ नहीं हो, आत्मा के स्तर पर है सब कुछ, ठीक है। तो यहां पर भगवान ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो इस शरीर के स्तर पर चर्चा कर रहे हो ना, भगवान अर्जुन से कहते हैं, तो इस शरीर के स्तर पर तुम आत्मा को, फैक्चुअल जो रियलिटी, अपरोक्ष ज्ञान जो है, उसे शरीर के स्तर पर नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए भगवान ने अपरोक्ष ज्ञान बीच में दिया है, नॉन सेंसरी परसेप्शन, कि भगवान ने लक्षण दिया आत्मा का। सबसे पहले सीधा ये नहीं बताया कि आत्मा कहां पर स्थित है, आत्मा का स्वरूप क्या है, नहीं, आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण दिया, उसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान, नॉन सेंसरी परसेप्शन। तो जैसे कि चेतना, आत्मा के अस्तित्व का लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस, हम सब उसको अनुभव कर सकते हैं. वी कैन एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस विद इन अस, चेतना का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम अभी लोकेट नहीं कर सकते कि आत्मा कहां पर है. हालांकि वो सर्वव्यापी है, वो पूरे हमारे शरीर में वो चेतना के रूप में व्याप्त है. तो ये सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है कि हमें यदि अपरोक्ष ज्ञान, फैक्चुअल रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी, रियलिटी ऑफ द सोल, रियलिटी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यदि उसे समझना है तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान के सहारे परोक्ष ज्ञान के थ्रू अपरोक्ष ज्ञान को समझना है. मतलब परोक्ष ज्ञान जो है वो इट्स अ कैटलिस्ट, वो कनेक्टिंग लिंक है. प्रत्यक्ष और अपरोक्ष का कनेक्टिंग लिंक क्या है? परोक्ष ज्ञान. तो इसलिए अब प्रत्यक्ष ज्ञान, सर्वप्रथम हम प्रत्यक्ष ज्ञान को लेंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान है सेंसरी परसेप्शन. जैसे कि आपकी आंखें अब देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, जो हमने उसका उदाहरण दिया उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान. अब ये क्या है? पंखा, इट्स अ फैन. तो यहां पर ये पंखा घूम रहा है, इसे आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो, ये पंखा घूम रहा है. परोक्ष रूप में आप कैसे समझोगे कि पंखा क्यों घूम रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप देख नहीं पा रहे है ना, परंतु आप पूर्ण रूपेण इस बात को मान रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये घूम रहा है. तो आप इफेक्ट देख रहे हो, उसका कॉज नहीं दिख रहा, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जानते हो, यू आर कन्विंस्ड कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये पंखा घूम रहा है. और कोई तरीका, मान लो कि आप लोगों को तो ज्ञान है कि इलेक्ट्रिसिटी से ये पंखा घूम रहा है, मान लो कि किसी को ज्ञान ही नहीं कि ये पंखा इलेक्ट्रिसिटी से घूमता है, तो उसे कैसे समझ में आएगा? उसे कैसे समझ में आएगा कि पंखा घूम रहा है? नहीं नहीं नहीं, हवा, हवा उसके ऊपर हवा आ रही ना, ही इज एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट ऑफ द मूविंग ऑफ द फैन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? तो हवा जो आ रही है वो हमारे ऊपर आ रही है, उससे समझ में आ रहा है कि ये पंखा ठीक घूम रहा है. यदि ये पंखा हवा नहीं फेंक रहा है तो क्या समझ में आ रहा है? ठीक नहीं घूम रहा है. इलेक्ट्रिसिटी भी है लेकिन फिर भी ठीक नहीं घूम रहा. मान लीजिए उसकी ब्लेड ठीक से नहीं लगाई गई, तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है पंखा के घूमना, पंखे के घूमने का इफेक्ट है कि वो हवा फेंकना और हम उसका अनुभव कर रहे हैं. अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इसके हाथ में है हाथ वाला पंखा, हाथ वाला पंखा इसके हाथ में है. तो कई बार लाइट जाने पर तुरंत हम कुछ ना कुछ ले, पेपर ले लेते हैं, कुछ हाथ वाला पंखा रखते हैं, उसको घुमाने लगते हैं. तो ये जो हाथ वाला पंखा अब है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, अब इसके इलेक्ट्रिसिटी पे तो नहीं चलेगा ये, तो ये किस पे चल रहा है? हाँ, वो ह्यूमन पावर, ह्यूमन पावर पे चल रहा है. तो जो ह्यूमन पावर पे ये हाथ वाला पंखा चल रहा है, इसको कैसे समझा जाए कि ये ठीक से चल रहा है? कि वो जो व्यक्ति उसको अनुभव कर रहा है, उसकी चेतना से, उसकी चेतना से उसको हिला रहा है और उसकी चेतना से उसके इफेक्ट को अनुभव कर रहा है, उस हवा को, तब जाकर उसके अस्तित्व को वो समझ पा रहा है कि ये जो हाथ वाला पंखा है ये हवा देने के लिए है. तो यहां पर हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान वो परोक्ष रूप में हम कैसे समझ रहे हैं, इफेक्ट के द्वारा। खाली देखने से हमें उसका अनुभव नहीं होगा, आंखें केवल। अभी यहां पर यदि यह कहा जाए कि पंखे का वास्तविक ग्रेटिफिकेशन हमारे शरीर को कैसे मिलता है, देखने से, देखने से आपको ठंडक पहुंच जाएगी? नहीं, आपके त्वचा के लिए, त्वक इंद्रिय के लिए। तो ये त्वक इंद्रिय के लिए संतुष्टि कब मिलती है? जब हमारी चेतना उस त्वक इंद्रिय की संतुष्टि को अनुभव करती है। ये थोड़ा गर्मियों के मौसम के लिए स्पेशल, समर स्पेशल। तो अब दिखने में ये आइसक्रीम बहुत सुंदर दिख रही है ना, लेकिन इसका वास्तविक अस्तित्व कब समझ में आएगा हमें? जब हम इसका आस्वादन करेंगे। तो अब इस आइसक्रीम का हम आस्वादन कर रहे हैं, तो क्या केवल जिह्वा आस्वादन कर रही है? चेतना, वो चेतना के द्वारा हम इस आइसक्रीम का आस्वादन करेंगे, तब जाकर कि हां ये मेरी जिह्वा एक कोई बहुत ठंडी मीठी आइसक्रीम का ये जिह्वा आस्वादन कर रही है। जब उस कॉन्शियसनेस में हम उस चेतना में इसका आस्वादन करेंगे, तब जाकर ये जो वस्तु है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट कर पाएगी। ये हमारे कौन से इंद्रिय को संतुष्ट कर रहा है? आंखों को। एक बहुत ही सुंदर ये दृश्य है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सीनरी विच इज ग्रेटिफाइंग अवर आईज। लेकिन फिर यही बात कि हमारे जो ये चर्म चक्षु हैं, ये चर्म चक्षु केवल यहां पर देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? केवल लाइट को देख रहे हैं, है ना? अवर आईज आर सिंपली लुकिंग एट सम लाइट विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्टर। बट वॉट इज योर कॉन्शियसनेस थिंकिंग? योर कॉन्शियसनेस इज थिंकिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल लेक, से हिमालयन माउंटेन्स, ब्यूटिफुल ट्रीज। योर कॉन्शियसनेस इज थिंकिंग ऑफ दैट। तो वो परोक्ष रूप से, ये जो प्रत्यक्ष आंखें परोक्ष रूप से चेतना के सहारे अपरोक्ष असली में वो जो सीनरी है उसका अनुभव कर रहा है। समझ में आया? एक और उदाहरण, ये है गुलाब, और गुलाब की जो महक है, सुगंध है, वो सुगंध हमारी जो नाक, हमारे जो नाक है वो नाक उसका आस्वादन करता है। परंतु वो कब आस्वादन कर पाएगा? जब कॉन्शियसनेस उसके अंदर जाए। और कई बार आप देखो कि आंखें देख भी नहीं रही, परंतु फिर भी लोग केवल सूंघने से पता लग जाता है कि नासरडी के बगल में है, या फिर किसी बगीचे में है। समझ में आ जाता है, केवल नाक के सहारे। तो अब हाँ, ये अब हमने प्रत्यक्ष ज्ञान के कुछ नमूने देखे। तो मैं आपको एक स्लाइड शो दिखाना चाहूंगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज सम लाइट्स। इस स्लाइड शो में आप देखिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान से हमें कितना ज्ञान मिलता है। तो आप ध्यान से इस स्लाइड शो को देखिए कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं और आपकी चेतना क्या सोच रही है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इस स्लाइड शो में डिफरेंस क्या समझ में आएगा? आपकी आंख क्या देख रही है और आपकी चेतना क्या सोच रही है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स। आप ध्यान से देखते जाइए, एक एक जो चित्र आएगा, शुरुआत में आपकी आंखें उस चित्र को क्या देख रही हैं, और वो चित्र जब बड़ा होके रुक जाएगा तब आपकी आंखें क्या देख रही है, और जब पहले आपकी आंखें उस चित्र को देखी थी तो मन क्या सोच रहा था, चेतना में आप क्या सोच रहे थे? एक एक चित्र को आप ध्यान से, जैसे वो छोटे से बड़ा होता है, उसका आप देखते जाइए ध्यान से, और मन में आपको क्या चेक करना है कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं और मेरी चेतना क्या सोच रही है। समझ में आ रहा है? चेतना क्या सोच रही थी? चेतना वो दूर से आइंस्टाइन दिख रहे थे, लेकिन और कोई है? ये सबसे इफेक्टिव लगा था मुझे। हरे कृष्णा। तो अभी डिफरेंस समझ में आया आपको कि प्रत्यक्ष ज्ञान और हमारी जो चेतना है उसका कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं है तो चेतना और कुछ सोच रही है और आंखें और कुछ देख रही हैं। तो इसलिए यहां पर अपरोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष हमारे सेंसेस से हम नहीं समझ पाएंगे जब तक कि परोक्ष ज्ञान, जब तक कि हम किसी इनडायरेक्ट तरीके से उस फैक्चुअल रियलिटी को नहीं समझे। तो अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे परोक्ष ज्ञान के ऊपर। इसे संस्कृत में एक न्याय कहते हैं, इसका नाम है शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय का अर्थ है कि कई बार छोटे बच्चों को जब पिता चंद्रमा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो सीधे चंद्रमा को नहीं देख पाता या समझ नहीं पाता कि हाँ इसे चंद्रमा कहते हैं, आकाशमंडल में जो ये चमकता हुआ है। तो फिर उस छोटे बालक को समझाया जाता है कि पहले उस पेड़ को देखो, तो पेड़ को देखता है एकदम निकट जो पेड़ है। फिर कहते हैं पेड़ की टहनी को देखो, तो पेड़ की टहनी को देखता है। और फिर कहते हैं कि पेड़ की टहनी के बीच में क्या दिख रहा है वो चमकता हुआ, हाँ कुछ तो चमकता हुआ गोल गोल दिख रहा है, उसे कहते चंद्रमा। तो अब छोटे बालक को क्या लगता है कि ये शाखाओं ने पकड़ रखा है उसे, जैसे पेड़ पे आम लटकता है, पेड़ पे कोई फल लटकता है, तो बच्चे को लगता है कि ये शाखा पर चंद्रमा लटक रहा है। जैसे इस चित्र में क्या दिख रहा है, लटक रहा है। उस पेड़ की शाखा से वो चंद्रमा कई कोसों दूर है। तो इसे इस न्याय को कहते हैं शाखा चंद्र न्याय, अर्थात चंद्र को दिखाने के लिए पहले शाखा दिखाई जाती है। उसी प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान को समझने के लिए परोक्ष, देयर इज अ वाया मीडियम विच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल रियलिटी। तो इसलिए शाखा चंद्र न्याय और परोक्षवाद, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब जब हम परोक्षवाद की बात करते हैं तो परोक्षवाद का इस्तेमाल हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने किया है सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीके से, इस भौतिक संसार की स्थिति को लेकर, स्थान को लेकर, वस्तु को लेकर, समय को लेकर, व्यक्ति को लेकर। जैसे श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने अमेरिका में प्रचार करना प्रारंभ किया तो अब ऐसे गूढ़ सिद्धांत को जो हम भारतीयों को भी समझने के लिए बहुत जटिल हो जाता है अक्सर, ये आत्मज्ञान, सांख्य योग, इसको श्रील प्रभुपाद ने हिप्पियों को जो वाद के सहारे अपरोक्ष ज्ञान को दे रहे थे। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने स्थान को इस्तेमाल किया, प्रभुपाद ने कहा कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में आने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आप अमेरिका नहीं आ सकते। तो श्रील प्रभुपाद ने यह उदाहरण लिया और कहा कि उसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए भी आपको योग्यता चाहिए। तब उन्हें समझ में आया कि हां, कौन से उदाहरण से समझ में आया, किसी स्थान के उदाहरण से। तो श्रील प्रभुपाद सिद्धांत स्थापित कर रहे थे आध्यात्मिक संसार में कैसे जाया जाए, परंतु उन्हें इस उदाहरण से समझाकर, इस परोक्ष उदाहरण से समझाकर कि अमेरिका में आने के लिए आपको जैसे पासपोर्ट वीजा आवश्यक पड़ता है, वैसे आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है। तब उन्हें वो बात समझ में आई उस उदाहरण से। प्रभुपाद ने कई बार अपरोक्ष ज्ञान को समझाने के लिए स्थिति, जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद प्रीचिंग वहां पर शुरू किए 65 और 70 का जो काल था, 1970, तो उस समय वियतनाम वॉर चल रहा था। तो प्रभुपाद वियतनाम वॉर, ये जो स्थिति है, स्थिति का उदाहरण लिए कि जैसे, और क्योंकि उस समय के जितने वो अमेरिका के नवयुवक थे उन्हें ड्राफ्ट बोर्ड के द्वारा आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, जाओ जाके लड़ो, उनको बंदूक पकड़नी नहीं आती, नहीं जस्ट पकड़ो बंदूक, ऐसे पकड़ो और ये इसको दबाओ मारो। तो इतने सब वो परेशान थे, जबरदस्ती उनको वियतनाम वॉर में भेजा जा रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने उस स्थिति का उदाहरण लिया और कहा कि जिस प्रकार से इतनी अनित्य है ये स्थिति, आज आप अपने घर पे बैठे हो, दूसरे दिन आपको बंदूक देकर शत्रु पक्ष से लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। तो ये समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार में कोई भी स्थिति नित्य नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया, हाँ ये बात बराबर, उदाहरण किसका दिया, वियतनाम वॉर, क्योंकि चल रहा था उस समय। अभी अगर अमेरिका में जाके आप वियतनाम वॉर का उदाहरण दो तो उनको नहीं समझ में आएगा। अभी अगर उधर जाकर ये उदाहरण दो कि आप किसी बिल्डिंग में हो और वो बिल्डिंग में प्लेन आके क्रैश हो सकता है, तब उनको समझ में, हाँ अभी समझ में आएगा वो WTC क्रैश के बाद। तो वो स्थिति का उदाहरण लेकर अपरोक्ष ज्ञान को सिद्ध किया श्रील प्रभुपाद ने। किसी वस्तु को लेकर, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद कुछ निर्विशेषवादियों से बात कर रहे थे। निर्विशेषवादी का अर्थ है इम्पर्सनलिस्ट, जो कि भगवान के रूप के विषय में इतना ज्यादा वो शरणागत नहीं है, परंतु जो निर्विशेष भगवान का जो अस्तित्व है उसके पीछे ज्यादा वो लालायित रहते हैं। तो वननेस, तो वननेस के बारे में प्रभुपाद से पूछ रहे थे। तो प्रभुपाद, माइक्रोफोन प्रभुपाद के सामने था, जैसे यह माइक्रोफोन है वैसे। तो प्रभुपाद ने कहा, अब इस वस्तु को इस्तेमाल करते हुए प्रभुपाद ने अपरोक्ष ज्ञान जो है, व्हाट इज एक्चुअल वननेस, उसे समझाया एक माइक्रोफोन के सहारे। प्रभुपाद ने कहा, व्हाट इज रियल वननेस, प्रभुपाद ने अपनी हथेली दिखाई, ये देखो ये क्या है। उन्होंने कहा, आपकी हथेली है, ये 5 उंगलियां। तो उन्होंने कहा, हाँ 5 उंगलियां, ये पांचों उंगलियां अलग है। उन्होंने कहा, हाँ अलग है, 5 उंगलियां, 5 उंगलियां अलग हैं, और ये 5 उंगलियां जब ये माइक्रोफोन को पकड़ती हैं तो क्या कार्य कर रही हैं? एक ही कार्य कर रही है ना। द 5 फिंगर्स ऑल्दो आर डिफरेंट, बट वेन दे आर होल्डिंग दिस माइक्रोफोन दे आर डूइंग वन एक्टिविटी, देर इज वन एक्ट ऑफ होल्डिंग द माइक्रोफोन। प्रभुपाद सेड दैट इज वननेस, दैट इज रियल वननेस, दैट एवरी वन, वी आर ऑल डिफरेंट बट वी हैव वन कॉमन इंटरेस्ट टू सर्व गॉड, जस्ट लाइक द 5 फिंगर्स आर डिफरेंट बट द कॉमन इंटरेस्ट इज टू होल्ड द माइक्रोफोन। तो प्रभुपाद ने वस्तु को इस्तेमाल किया अपरोक्ष ज्ञान को स्थापित करने के लिए, एक माइक्रोफोन को इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके सामने उन्होंने वस्तु देखी तो समझ में आया उन्हें। फिर समय, व्यक्ति, प्रभुपाद ने समय का इस्तेमाल किया। प्रभुपाद ने अमेरिका में उस समय अमेरिका सबसे ज्यादा प्रगतिशील देश, तो प्रभुपाद अमेरिका में प्रवचनों में कहते कि व्हाट इज द यूज ऑफ यू बीइंग अमेरिकन्स इफ यू कैन नॉट डू समथिंग बिग, बिकॉज यू आर इनटू डूइंग थिंग्स इन अ बिग वे। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रचार के कार्य में अमेरिका उस समय जो इतनी प्रगति के पथ पे था, उस प्रगति को इस्तेमाल करते हुए अपरोक्ष ज्ञान को सिद्ध किया। और वही प्रभुपाद जब भारत में आते तो भारत में प्रभुपाद कहते, व्हाट इज द यूज ऑफ यू बीइंग इंडियंस इफ यू कैन नॉट प्रीच, भारत भूमि तो होइल मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो यहां पर, यहां का जो काल है, यहां का जो समय है, वो किसके लिए है? धर्म का पालन करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए। तो जन्म इसलिए हमें भारत में दिया गया। तो उसे प्रभुपाद इस्तेमाल करते हुए अपरोक्ष ज्ञान को सिद्ध कर रहे थे। तो इन उदाहरणों से हम क्या समझ रहे हैं कि प्रभुपाद ने उन अपरोक्ष, इतना जो जटिल सिद्धांत है उसको स्थापित करने के लिए स्थान, स्थिति, वस्तु, समय, व्यक्ति, इनको इस्तेमाल किया। तो इससे समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण, जो आज का श्लोक हमने लिया, भगवान कृष्ण अपरोक्ष ज्ञान को परोक्ष ज्ञान से कैसे समझा रहे हैं, वही जो उनके प्रतिनिधि श्री प्रभुपाद और अन्य आचार्यों ने भी उसी प्रकार से उसे सिद्ध किया है। आप लोग सोच रहे होंगे, आज ये बहुत विचित्र चित्र कहां से आ रहे हैं। एक परोक्षवाद के संदर्भ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सुंदर कहानी सुनाया करते थे कि परोक्षवाद को कैसे समझाया जाए। तो एक गांव, गांव नहीं था वो, एक प्रांत था, एक राज्य था, और उस राज्य का जो राजा था वो बंदरों से बहुत प्रेम किया करता था, इसलिए बंदरों का चित्र है, क्योंकि फिर थोड़ा हमारी चेतना बनी रहेगी बंदरों में, क्योंकि पूरी कहानी उनके संदर्भ में। तो ये राजा बंदरों से बहुत प्रेम किया करता था, तो बंदरों के झुंड को इसने पाल रखा था, पालतू बंदर। और इन बंदरों के झुंड में एक, जो यहां पर आपको दिख रहा है थोड़ा मुखिया, ओल्ड ओल्ड वाइज मंकी, तो एक वरिष्ठ बंदर था इस बंदरों के झुंड में। तो कई सदियों से इनके वंशज बंदर के वहां पर पाले गए थे राजा के द्वारा, सब ऐशो आराम इन बंदरों को राजा के द्वारा प्रदान किया गया था कि कहां पर भी इनके लिए बागीचे, बागान और खेलने के लिए वृक्ष, और फिर खाने के लिए अनगिनत फल, जो भी कुछ उन्हें चाहिए, मस्ती करने के लिए जगह, सब कुछ। तो अब हुआ क्या कि एक दिन ये जो सबसे वरिष्ठ बंदर, इस वरिष्ठ बंदर ने एक घटना देखी अपने आंखों से, और उसने ये देखा कि जो राजा के महल की रसोई थी, वो रसोई में एक भेड़ घुसा, शीप, एक भेड़ घुसा, और वो भेड़ जो है वो में उस आग को बुझाने के लिए, तो हुआ क्या कि वहां पर आग वो घास को पकड़ ली, और फिर घोड़ों के कुछ शरीर जले, उनकी चमड़ी जली। और जब राजा को पता लगा कि मेरे प्रमुख घोड़े, उनकी चमड़ी जल चुकी है, तो उसने वैद्य को बुलाया, वेट, वेटरनरी डॉक्टर, उसको बुलाया। तो उसने कहा कि घोड़े की जली हुई चमड़ी के ऊपर मंकी का फैट, दैट इज दी ओनली मेडिसिन बंदर के शरीर का मांस। तो राजा ने कहा, तो फिर देरी क्या है, इतने सारे बंदर क्यों पाल रखे मैंने, मारो सालों को सबको। अब ये जो बंदर है, इसने कहां तक सोचा था कि उसे पता था कि ये एक दिन होगा, क्योंकि राजा को बंदरों से ज्यादा आवश्यकता है उनके घोड़ों की, और ये एक दिन होगा, और हुआ। तो यहां पर इस कहानी से भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर समझाए कि हम जब इस भौतिक संसार के लक्षणों को देखते हैं ना, क्या देख रहे हैं अभी वैज्ञानिक देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, कि वो देख रहे हैं लक्षणों को कि क्या भेड़ अभी रसोई घर के अंदर जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग, अलग अलग लक्षण देख रहे हैं अभी, ये सब कुछ जो हो रहा है यूरोप में, यूके में, ये सब प्रकृति में अलग अलग प्रकार से हम जब प्रकृति में खिलवाड़ करते हैं, तो ये लक्षण प्रकृति दिखाई देती है, हमें दिखाती है इनके द्वारा, वॉल्केनो या टॉर्नेडो, अर्थक्वेक, हरिकेन, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप, ये सब कुछ जो है ये लक्षण है कि आगे चलकर जो हम अपनी परिस्थिति को दुख में डाल रहे हैं, उसके लक्षण अब हैं, ये आ रहे हैं। और ये भगवान ने ऐसा नहीं कि अभी ये लक्षण बता दिखा रहे हैं हमको, भगवान ने गीता में इस भौतिक प्रकृति के लक्षण बता दिए, दुखालय और अशाश्वत। तो केवल उसे पढ़ने मात्र से हमारी चेतना को अपरोक्ष ज्ञान क्या मिल जाना चाहिए, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव, दिस मटीरियल वर्ल्ड, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, वी हैव टू लीव दिस किंगडम वेयर आवर फ्यूचर इज ब्लीक, जस्ट लाइक द मंकी, द वाइज ओल्ड मंकी, ही कुड डेसिफर। तो इसलिए यहां पर इस सिद्धांत को, परोक्षवाद के सिद्धांत से हम इस भौतिक संसार के स्वरूप को समझ पाएंगे, और भौतिक संसार का स्वरूप है बिल्कुल विपरीत आध्यात्मिक संसार के स्वरूप से। तो केवल यदि हम भौतिक संसार का स्वरूप जान लें, तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि आध्यात्मिक संसार किस प्रकार का है और वहां पर हमें क्यों जाना चाहिए। भौतिक शरीर का स्वरूप जान लें, तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्म का साक्षात्कार हमें क्यों करना चाहिए। इसलिए अपरोक्षवाद, जो कि भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया अर्जुन को, और विश्वरूप के पश्चात फिर अपना द्विभुज रूप दिखाया, तो अर्जुन को क्या समझ में आया, अर्जुन को विश्वरूप देखने के पश्चात फिर समझ में आया कि ये जो गीता मुझे सुना रहे हैं ये साधारण नहीं है। जब भगवान सुना रहे थे तब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा 11वें अध्याय तक कि ये इतना सब कुछ अपनी भगवत्ता के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे साथ ही तो पैदा हुए हैं कृष्ण, ये तो एक ग्वाल बाल थे ना, ये तो बांसुरी बजाते थे, ये सब कुछ सोच रहे थे। तो तो फिर भगवान ने परोक्षवाद के द्वारा विश्वरूप दिखाया, विश्वरूप दिखाए, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को दिखाया कि कैसे वही चला रहे हैं। और जब अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को देखा, तब भगवान जो बैठे हुए रथ पे, यहां पर आप देखो, वो जो भगवान बैठे हुए रथ पे वो कौन है? अपरोक्ष, दैट इज अ फैक्चुअल रियलिटी। और जो विश्वरूप भगवान ने दिखाया वो परोक्षवाद के द्वारा अपनी भगवत्ता को सिद्ध करते हुए, भगवत गीता की वाणी को सिद्ध करते हुए अर्जुन को समझाया। तो इन सब उदाहरणों से, सिद्धांतों से हमें इसी निष्कर्ष पर आना चाहिए जो आज का श्लोक, कि भगवान हमारे जो प्रत्यक्ष शरीर हमें दिया है, प्रत्यक्ष इंद्रियां उसमें जो हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान से हमें अपरोक्ष ज्ञान तक पहुंचना है। विथ यूजिंग अवर सेंसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल रियलिटी, बट वी कैन अंडरस्टैंड ओनली थ्रू द नॉन सेंसरी परसेप्शन, एंड दैट इज द साइंस ऑफ सोल, वो है आत्मा का ज्ञान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है? प्रत्यक्ष प्रश्न? भगवान श्री कृष्ण भी 11वें स्कंद में उद्धव जी को परोक्ष और अपरोक्षवाद के विषय में समझाते हैं कि कैसे हम फैक्चुअल रियलिटी को समझें। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।